नमस्कार भारत 20 दिसंबर शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को हुए प्रदर्शनों में 3 की मौत, कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, नागरिकता कानून पर यूएन जैसी एजेंसी की निगरानी में हो जनमत संग्रह। नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार ने छपवाई विज्ञापन, क्या है इस कदम के मायने?
एक क्लियर बयान जारी करने की आवश्यकता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और किस ऑर्डर में होने वाला है।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी देखने को मिली है। कल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 3 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 2 लोगों की मौत मंगलुरु में हुई, जबकि 1 मौत लखनऊ में हुई है। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज होगा। झारखंड में 5 चरणों में मतदान करवाया गया है। आज होने वाले मतदान में कुल 16 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और वहां इस समय बीजेपी की सरकार है। अमरीकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चलने वाले महाभियोग का मुद्दा गरमाया हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं की इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। चैम्बर के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन मेजोरिटी पर आरोप लगाया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप पर अंधों की तरह विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने चेताया है कि इससे ट्रंप पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वहीं मेजोरिटी नेता मिच मैककॉनल ने कहा है कि डेमोक्रेट नेता ने गुस्से में और बदला लेने के मकसद से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने को मंजूरी दी है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से महाभियोग के संबंध में पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह सब महज नाटक है।
Well, I don't feel like I'm being impeached because it's a hoax, it's a setup.
मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मुझ पर महाभियोग चल रहा है, क्योंकि यह सब पहले से ही तय था। यह एक तरह का नाटक है। यह जो कुछ भी हो रहा है बहुत खराब है। महाभियोग एक बहुत भद्दा शब्द है, लेकिन विपक्ष ने इस शब्द को हल्का बना दिया है। ऐसा कभी किसी दूसरे राष्ट्रपति के साथ नहीं होना चाहिए। यह थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय के नज़दीक गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एजेंसी के एक अधिकारी के मारे जाने की सूचना है। यह जानकारी खुद सुरक्षा एजेंसी की तरफ से दी गई है। एजेंसी ने हमलावर के मारे जाने की पुष्टि भी की है, हालांकि उन्होंने अभी तक उसकी पहचान जाहिर नहीं की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। जिस वक्त गोलीबारी हुई उस समय कई लोग वहां मौजूद थे। उनमें से एक चश्मदीद ने इस घटना के बारे में कुछ यूं बताया। जिस वक्त गोलीबारी शुरू हुई मैं वहीं था, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं कोने में छिप गया। मैंने देखा कि लगातार गोलियां चल रही थी। इस बीच आपातकालीन सेवाएं भी वहां पहुंच गईं। हालांकि इससे पहले सुरक्षा बल वहां पहुंच गए थे। उन्होंने हमलावर को शायद तब तक मार दिया था। ये थे एक चश्मदीद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान में कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन और प्रतिबंधों के बाद अब देश के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने पूर्व शिक्षा मंत्री हसन दियाब को नई सरकार बनाने की पेशकश की है। हसन दियाब को हिजबुल्ला नेता और उनके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन दूसरे राजनीतिक धड़े उनका विरोध करते हैं। उनकी नियुक्ति की खबर मिलने पर बेरूत और त्रिपोली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं। हेती की सरकार ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र से अपील करेंगे कि वह अपने उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करें जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की ही एक रिपोर्ट में हेती की युवतियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाया गया था। हेती के विदेश मंत्री बोचित एडमोंड ने कहा कि पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र से जवाब चाहती है कि वह पीड़िताओं को उचित मुआवजा दें। एक रिपोर्ट में पता चला था कि हेती में साल 2010 में आए भूकंप के बाद वहां मदद के लिए गए यूएन के कार्यकर्ताओं ने कई युवतियों का यौन शोषण किया था। ऑस्ट्रेलिया में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए 2 दमकलकर्मियों की मौत हो गई है। ये दमकलकर्मी सिडनी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लगी आग को बुझा रहे थे। इसके साथ ही न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण इलाकों में लगी आग को बुझाते हुए 3 दमकलकर्मी घायल हो गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की। गुरुवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कल दिल्ली के लाल किला इलाके से लगभग 1200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन को लेकर गिरफ्तार किया। उधर मुंबई में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनों के दौरान भीड़ उग्र हुई और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में कल देशभर में 3 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि कई जख्मी हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में निषेधाज्ञा लागू की गई थी, मगर दोनों राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हुई और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत कर्नाटक के मंगलुरु में हुई। इस बीच हालात को देखते हुए मंगलुरु में इंटरनेट सेवाओं पर भी आज रोक लगा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की बेंगलुरु में मौजूद हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से और पूछा कि अभी हालात कैसे हैं।
जी, परिस्थिति दूसरे जिलों में तो ठीक ठाक है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स तो अभी भी लागू हैं सारे राज्य में, मगर कल देर रात को कर्नाटका के एडिशनल मुख्य सचिव रजनीश गोयल ने मंगलुरु में इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया है। उनके आदेश में ये कहा, कारण दिया गया है कि मंगलुरु में नाजुक परिस्थिति है और जिसके वजह से इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा सकता है और लोगों को भड़काया जा सकता है। दरअसल कल के पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गगई थी और कहा जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हैं। तो शायद इसी वजह से शासन ने यह निर्णय लिया है। आपको ये भी बता दें कि कल देर शाम को जब पुलिस ने कर्फ्यू लगाया था तो राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने एक अजीब से बयान दिया। उन्हें मंगलुरु की हिंसा में गहरी साजिश नजर आई। उनका कहना था कि मंगलुरु की हिंसा में उनको गहरी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि केरला के लोग मंगलुरु में आए हैं और इसीलिए ये हिंसा हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने भी अपील की है कि हर समुदाय के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए।
कल से पहले ही प्रशासन ने ये कह दिया था, क्योंकि कल पक्ष में भी प्रदर्शन होने थे और विपक्ष में भी प्रदर्शन होने थे इस कानून के, तो इसे देखते हुए निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तो ये प्रदर्शन जो हुए, ये मौतें जो हुई, ये कहाँ हुई और क्या कारण रहा?
जो भी मौतें हुई हैं वो मंगलुरु में हुई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि पुलिस को लोग घेर लिए थे और कुछ लोग पुलिस स्टेशन के एक कमरे में पेट्रोल भी फेंक दी थी ताकि वो उसको जला सकें। तो जब भी पुलिस फायरिंग की गई थी और उसमें बहुत से लोग घायल हुए थे।
इमरान कुरैशी बता रहे थे कि मंगलुरु में हुए प्रदर्शनों के दौरान हालात कैसे बिगड़े। पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोकी गई थीं, अब कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य बन गया है जहां नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण इंटरनेट बंद किया गया है। उधर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और SMS को अगले 45 घंटों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों के लिए सबसे जो फोकस है वो उस इलाके पर है। इंटरनेट पर रोक का ये जो सिलसिला है सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू हुआ था, खासकर असम से, जहां पर नागरिकता संशोधन बिल जब संसद में पेश किया गया था तभी से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। इंटरनेट वहां अभी भी बंद है। कैसी स्थिति है इसको लेकर हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा ने बिना इंटरनेट के किसी तरह से फोन के जरिए हमें ये रिपोर्ट भेजी है, सुने।
के बाद नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जिस तरह लोगों का हुजूम विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरा, वैसा दृश्य बीते 35-40 सालों में किसी ने यहाँ नहीं देखा। नागरिकता संशोधन कानून के चलते असमिया जाति, उनकी भाषा और संस्कृति खत्म हो जाने के डर ने प्रदेश में ऐसा माहौल उत्पन्न किया कि 5 लोगों की जान चली गई। कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा पर रोक, सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से राज्य का सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि बीते कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन के सांस पड़ने से यहां के बाजार में लोगों की रौनक लौटती दिख रही है, लेकिन सवाल अभी यही पूछे जा रहे हैं कि क्या असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आगे भी इसी तरह का आंदोलन चलेगा। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के महासचिव लोरेन ज्योति गोगोई इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं,
हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चालू हुआ असम में,
चलता रहेगा। असल में बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने से जुड़ा ये मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा, लेकिन क्या इसके विरोध में हो रहा ये आंदोलन 1989 में हुए असम आंदोलन की तरह ही एक बड़ा जन आंदोलन बन पाएगा? गुवाहाटी के वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया कहते हैं,
आप अगर लोगों को बोल दे आप रास्ते में आ जाओ भाई, असम का स्वाभिमान का बने, असम का प्राइज का बने, असम का जो गुवाहाटी का जो लोकल न्यूज चैनल उन्होंने भी इसकी बात की है, न्यूज एंकर ने ऐसा ऐसा बोला कि आओ आप लोग आ जाओ रास्ते में आ जाओ असम का बने, हम ऐसा दोबारा हो ही नहीं सकता है। और असम ऐसा तो आ तो इमोशनल एक मूवमेंट हमको नहीं होना चाहिए, हमको होना नहीं चाहिए, क्योंकि असम एक्ट का जो आउटकम है हम लोग हमने तो देखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 59 याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनने का फैसला किया है, लिहाजा ऐसी स्थिति में आंदोलन जारी रखने वाले लोगों से प्रशासन कैसे निपटेगी? दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून मामले में एक निष्पक्ष एजेंसी की निगरानी में, जैसे कि UN की निगरानी में जनमत संग्रह करवाने की बात की है। कल दिन भर क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, ये जानने के लिए BBC संवाददाता मानसी दास ने बात की कोलकाता में मौजूद BBC संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से।
कल का जो दिन था वो प्रोटेस्टर्स का दिन था, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स बाहर निकले थे सड़कों पर, आर्टिस्ट कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और बहुत सारी महिलाएं भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और NRC के खिलाफ बाहर निकले थे। एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था जो रामलीला मैदान से शुरू होकर न्यू मार्केट तक गई थी। करीब 3 किलोमीटर के इस रास्ते पर इस रैली में हर जगह पर नारेबाजी हुए थे। जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये जो CAA है ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसको वेस्ट बंगाल में वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे।
इस सब जो NRC निकाला गया है, आज 6 महीना हम लोग का काम बंद था, हम लोग खाना पीने से भी बहुत मजबूर थे, किसी को सुनाने नहीं गए हम लोग, मगर 10 रुपया पीस वाला काम अब चालू हुआ। मोदी जब से इस सब अलाउ किया है तब से हम लोग का काम खत्म था, ये कागज ला वो कागज ला, तो हम लोग कितना कागज निकाल के देंगे आगे चल के, तो इतना कागज वाला बात तो नहीं होता रहा। जब से मोदी आया ये कागज का क्या कहानी निकाल दिया।
NRC का जब चालू हो जाएगा तो इन लोग का NRC एक्ट में इन लोग का यहाँ से बाहर निकाल देगा, डिटेंशन कैंप पे बैठा देगा, जैसे आसाम में हो रहा है, इसीलिए इन लोग का डर है।
ममता बनर्जी ने एक पब्लिक मीटिंग कल की थी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि जितने भी स्टेट्स हैं, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स का नाम लिया था, इन सारे स्टेट्स को यूनाइट होकर ये जो एक्ट है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने साथ साथ एक एक्ट के खिलाफ एक जनमानस खड़ा करने के लिए UN जैसी एजेंसी को इंटरवीन कर लोग क्या चाहते हैं CAA को लेकर उसके बारे में वोटिंग करवाने की उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग में बात की थी।
क्या इस वहाँ कुछ आगजनी जैसी कोई घटना हुई, कोई हिंसक प्रदर्शन हुए या लगभग प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहे?
देखिए, जब ये एक्ट पास हुआ था उसके बाद में तुरंत 2-3 दिन तक यहाँ पर वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपील की थी कि प्रोटेस्ट तो होगा लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए। उनकी इस अपील के बाद वायलेंस की जो वारदातें थी वो पहले कम हुई और अब बिल्कुल बंद हो गई है। प्रोटेस्ट स्टेट में चालू है लेकिन वायलेंस की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आ रही।
BBC संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा बता रहे थे पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं। 19 दिसंबर को यानी नागरिकता संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के करीब 6 दिन बाद भारत सरकार ने हिंदी और उर्दू के कई अखबारों में इससे संबंधित विज्ञापन दिए। सरकार स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहती थी कि इस नए कानून को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं और लोगों के मन में इसे लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि BJP बैकफुट पर है, या फिर ये कहा जाए कि स्थिति को नियंत्रण करने की ये कोशिशें बताती हैं कि इस कानून को लेकर सरकार का इरादा मजबूत है? क्या कहते हैं जानकार, सुनिए BBC संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट।
नागरिकता संशोधन कानून बनने से पहले ही इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन इसे लेकर सरकार में एक तरह की खामोशी रही। विरोध प्रदर्शनों ने व्यापक रूप लेना शुरू किया और दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, अहमदाबाद, कर्नाटक, असम, बंगाल और महाराष्ट्र में इसे लेकर विरोध की आवाजें तीव्र होती चली गईं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह टेलीविजन पर इस कानून के बारे में चर्चा करते दिखाई दिए। बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी हरकत में आया और इस कानून को लेकर रही चिंताओं के बारे में पोस्ट दिखने लगे। 19 दिसंबर को अखबारों पर सरकार की तरफ से इसे लेकर बड़े बड़े विज्ञापन दिखे। तो क्या सरकार ने इस कानून को लेकर जनता के बीच में जाने में देर कर दी या फिर विरोध बढ़ने पर उसका रुख नर्म हुआ? वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मानते हैं कि बीजेपी इस कानून को लागू करने का मजबूत इरादा रखती है।
एक कि ये संविधान सम्मत नहीं है और दूसरा विरोध का जो आधार है वो ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और दूसरा ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो जो एक्ट बना है बड़ी स्पष्ट बात है कि ये किसी भारतीय मुसलमान के बारे में नहीं है या किसी भी भारतीय नागरिक के बारे में नहीं। ये बात सही है कि इन तीनों देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। उसका आधार ये है कि ये तीनों देश जो है इस्लामिक स्टेट हैं, इनका देश का धर्म इस्लाम है, इसलिए वो न तो अल्पसंख्यक है न उस तरह से धार्मिक रूप से प्रताड़ित है।
प्रदीप सिंह कहते हैं कि इस कानून को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इस कारण सरकार कोशिश कर रही है कि वो इस कानून के बारे में लोगों की भ्रांतियां दूर करे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन कहती हैं कि सरकार इसका आकलन करने में नाकाम रही कि कानून का कड़ा विरोध भी हो सकता है।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की स्क्रिप्ट जो है वो गड़बड़ा गई, क्योंकि इस बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हर एक प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी का यही मत कैलकुलेशन था कि एक हिंदू मुस्लिम वाला मामला बन जाएगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये अब हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं कहीं का भी। आज या कल से देख रही हूँ कि सरकार थोड़ा बैकफुट में जा रही है।
हाल में गृह मंत्री ने दो टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दिए थे जिसमें उन्होंने कहा कि NRC में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
NRC में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। जो कोई भी NRC के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा सबको निकाला जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के लिए NRC है ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, NRC लेकर कौन आया? 1985 में असम समझौता हुआ, पहली बार NRC की बात एक्सेप्ट की गई।
राधिका रामासेशन मानती हैं कि मुसलमानों में इस कानून को लेकर बिल्कुल गलत संदेश गया है। वो कहती हैं कि सरकार इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कर रही जिस कारण असमंजस की स्थिति बरकरार है।
थोड़ा कंफ्यूजन तो आ ही रहा है। कभी कहते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं होगा, कभी कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको NRC में नहीं जाना पड़ेगा। तो वंस एंड फॉर ऑल आप एक क्लियर बयान जारी करने की आवश्यकता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और किस ऑर्डर में होने वाला है, आम नागरिकों को क्या क्या करना पड़ेगा, ये क्लैरिटी नहीं आ रही है ना।
वहीं प्रदीप सिंह कहते हैं कि इस कानून को लेकर सरकार के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ कानून के विरोध में लोग खड़े हैं, छात्र हैं, तो दूसरी तरफ इसके पक्ष में भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं।
बड़े पतली रस्सी पर खड़े हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा अगर कि ये संविधान सम्मत है कानून, तो उनके पास और कोई तर्क नहीं बचेगा। कानून और संविधान उनके साथ है अभी तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसके उलट कोई आदेश नहीं देता। संसद के दोनों सदनों से पास किया हुआ कानून तब तक देश का संवैधानिक रूप से लागू किया जाने वाला कानून है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको पलट न दे।
हालांकि राधिका रामासेशन मानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट विरोध खत्म करने जैसा आदेश दे तो सकती है, लेकिन भारत एक गणतंत्र है और विरोध करना व्यक्ति का हक माना जाता है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता कि विरोध प्रदर्शन अब जल्द ही रुकने वाले हैं। मानसी दास, BBC, दिल्ली।
श्रोताओं, अभी मैंने कहा कि 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन ये अस्तित्व में आया था 12 दिसंबर को जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और अब अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी नवीन नेगी।
जी आदर्श, दिल्ली से छपने वाले सभी अखबारों में भी वही खबरें हैं जो हमारे आज के बुलेटिन में भी शामिल हैं, यानी नागरिकता कानून पर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसी से सभी अखबार भरे पड़े हैं। मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस है जिसने बड़े बड़े अक्षरों में सिटीजनशिप लिखा है और नीचे विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर लगाई है और लिखा है कि पहली बार राजधानी दिल्ली में जो है इंटरनेट और वॉइस SMS ये सब चीज़ें बंद हो गई, इसकी खबर इसको छापा है। एक और सुर्खी की बात करूं तो हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कैपिटल इंटरप्टेड, यानी कि राजधानी दिल्ली कल जिस तरह से ठहर गई थी, कई मेट्रो स्टेशनों को रोक दिया गया, यानी 20 मेट्रो स्टेशंस को जो है कल बंद किया गया था, धारा 144 भी लगाई गई थी, इंटरनेट भी रोक दिया गया था, ये खबरें भरी पड़ी हैं।
जी मेरे पास, मेरे सामने है दैनिक भास्कर, इसमें लिखा है नए कानून पर गुस्सा, 6 भाजपा शासित राज्यों समेत 11 प्रदेशों में प्रदर्शन, 5,000 से ज्यादा लोग हिरासत में। और साथ ही एक इन्होंने जो अपना शीर्षक है खबर का,
शीर्षक कुछ
अलग तरह से लगाया है, आप पहली नज़र में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नागरिकता की अग्नि परीक्षा, लेकिन जो नागरिकता है उसमें ता को थोड़ा धुंधला रखा गया है, तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नागरिक की अग्नि परीक्षा।
जी, और विरोध प्रदर्शन से ही जुड़ी एक तस्वीर है जो नवभारत टाइम्स ने लगाई है जिसकी काफ़ी चर्चा भी कल हो रही थी। ये तस्वीर है कि एक युवती जो कि विरोध प्रदर्शन करने जंतर मंतर पे गई थी, वो सुरक्षा बल को जो है एक गुलाब का फूल भेंट कर रही है और उस पर दूसरे हाथ में उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे डैड सोचते हैं, यानी मेरे पिताजी सोचते हैं कि मैं यहाँ इतिहास पढ़ रही हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं तो इतिहास बनाने में बिजी हूँ।
जी,
तो इसकी काफ़ी चर्चा हुई कल कि कई जो विरोध जो प्रदर्शनकारी हैं, कई जगहों पर तो हिंसा भी देखने को मिल रही है लेकिन कई जगह पर दूसरे दूसरे तरीकों से भी लोग विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के साझेदार NCP के नेता शरद पवार ने कहा कि देश को BJP के विकल्प की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा जो देश में टिक सके। चर्चा है कि उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था जो कि हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे। BBC संवाददाता मानसी दास ने बात की BBC मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित से और जानना चाहा कि महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार में साथ हैं तो फिर इस तरह के बयान का आखिर क्या मतलब निकलता है।
क्लियरली शरद पवार का इशारा राहुल गांधी की तरफ था। नागपुर में वो कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बात कर रहे थे और उस समय BBC मराठी के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मयूरेश कोंडनूर वो भी वहाँ पे थे उन चुनिंदा पत्रकारों में, और वहाँ पे उनकी जब गपशप चल रही थी तब शरद पवार से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी को कोई ऑप्शन देश में अभी आपको उभरता नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन तो हो सकता है लेकिन वो उस समय देश में होना चाहिए, और बाद में वो हंस पड़े। तो उन्होंने ये राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन राहुल गांधी को टॉन्ट ज़रूर किया है, और ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला है। UPA 1 और UPA 2 दोनों जब सरकारें थीं उस समय राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। मुझे याद है जब राहुल गांधी ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी तो शरद पवार ने कहा था कि ये कोई मैच्योरिटी वाला स्टेप मुझे नहीं दिखाई देता, या फिर शरद पवार ने एक बार इस्तीफा भी दिया था और फिर बाद में उन्हें मनाया गया, उस समय पे भी उन्होंने राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर कुछ सवाल पैदा किए थे। राहुल UPA 1 के टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी को अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। तो जब भी ये बात चलती थी कि क्या मनमोहन सिंह को राहुल गांधी रिप्लेस करेंगे, तब तब NCP में ये चर्चा हमेशा होती थी कि अगर राहुल गांधी लीड करते हैं तो क्या शरद पवार उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे, और NCP के बहुत सारे नेता यही कहते थे कि शरद पवार को अप्रिहेंशंस है कि शरद पवार सोनिया गांधी के लीडरशिप में काम कर सकते हैं लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में काम करने से उन्हें परहेज है।
शरद पवार सोनिया के काफ़ी करीबी हैं जबकि राहुल गांधी के उतने करीबी नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल अध्यक्ष हैं नहीं, तो अगर शरद पवार राहुल गांधी को लेकर ताना कसते हैं तो ये ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत छोटी सी हरकत है?
राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है लेकिन राहुल गांधी ने एक तरीके से कमबैक भी किया है रामलीला की रैली के बाद, और उसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई है कि क्या राहुल गांधी अब फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी कुछ समय के लिए ही प्रेसिडेंट बनी है, बाद में राहुल गांधी वापस आए ये मांग कांग्रेस के काफ़ी नेता कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी यही कहते हैं कि राहुल जी आप वापस आ जाइए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनिए। तो मुझे लगता है कि उस समय पर शरद पवार का ये बयान आना ये एक तरीके से दिखाता है कि ही इज़ पर्सनली नॉट वेरी कम्फर्टेबल विथ राहुल गांधी लीडिंग द ऑपोजिशन।
लेकिन कांग्रेस में इस बयान को लेकर किस तरह का रिएक्शन है, या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का नाम कांग्रेस के साथ ही जुड़ा है, शिवसेना तक का रास्ता कांग्रेस के लिए शरद पवार ने बनाया है।
जब हमने कांग्रेस नेताओं से ये पूछा कि क्या आप इस बात पर रिएक्ट करना चाहेंगे, तो उनका यही कहना था कि एक तो शरद पवार ने ये जो बात कही है ये कैमरे पे नहीं कही है, कुछ पत्रकारों से बात करते हुए कही जो हमने नहीं सुनी, और दूसरा उनका कहना था कि अगर शरद पवार ने कहा भी होगा तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है तो हम रिएक्ट क्यों करें। सो ऐसा दिखता है कि 10 साल काम करने के बाद शरद पवार सोनिया से कंफर्टेबल है। शरद पवार ने कांग्रेस सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन को लेकर ही छोड़ी थी, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में एक अच्छा कंफर्टेबल सा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है ऐसा दिखता है, और वो रिलेशनशिप राहुल गांधी और शरद पवार इन दोनों के बीच में बिल्कुल ही नहीं है।
मोटा मोटी ये कि अब गांधी परिवार के नाम से ऊपर आए कांग्रेस और नए लीडरशिप की तरफ बढ़े।
मैं ऐसा नहीं समझता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो लेकिन राहुल गांधी ना हो, तो फिलहाल वो राहुल गांधी को लेकर सवाल पैदा कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है।
बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित को आप सुन रहे थे, और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूँ रेखा। कल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के लिए हुई नीलामी में सभी फ्रेंचाइजियों ने जमकर बोली लगाई। इस दौरान सबसे अधिक दिलचस्पी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में देखी गई। किंग्स 11 पंजाब ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ रुपए में विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने टीम में शामिल किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइज में और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल को 8 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करेन को 5.5 करोड़ रुपए में, पीयूष चावला को 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान ऑयन मॉर्गन को 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को 15.5 लाख की रिकॉर्ड राशि में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। वहीं राहुल त्रिपाठी को 60 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने विराट सिंह को 1.9 करोड़ रुपए में और भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान प्रियम गर्ग को 1.9 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो रॉबिन उथप्पा को 3 करोड़ रुपए में, जयदेव उनादकट को 3 करोड़ में, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 2.40 करोड़ में खरीदा गया। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत को 80 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ रुख करें तो इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय को उनके बेस प्राइस 1.5 करोड़ में ही खरीद लिया गया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स को उनके 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में अपने साथ लिया गया। एलेक्स कैरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा। वहीं किंग्स 11 पंजाब ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल को 8.5 करोड़ में खरीदा और दीपक हुडा को 50 लाख रुपए में खरीदा। और अब बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के कप्तान एरोन फिंच को 4.4 करोड़ में खरीदा गया। 1.5 करोड़ के बेस प्राइस वाले दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं 30 लाख की बेस प्राइस वाले स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 4 करोड़ में खरीदा गया। खेल समाचारों में आज इतना ही,
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। कल हुए प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज होगा। झारखंड में 5 चरणों में मतदान करवाया गया है। अमरीकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चलने वाले महाभियोग का मुद्दा गरमाया हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं की इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय के नज़दीक गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एजेंसी के एक अधिकारी के मारे जाने की सूचना है। लेबनान में कई हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शन और प्रतिबंधों के बाद अब देश के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने पूर्व शिक्षा मंत्री हसन दियाब को नई सरकार बनाने की पेशकश की है। हेती की सरकार ने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र से अपील करेंगे कि वो अपने उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करें जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की ही एक रिपोर्ट में हेती की युवतियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए 2 दमकलकर्मियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।